नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की। गृहमंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा कि इस अवधि में 15 लाख करोड़ रूपये की परियोजनाएं शुरू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने जल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। पेरू के जंगलों में लगी आग से 15 लोगों की मौत और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। और चीन के उलुवनियूर में 5वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में महिलाओं के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना के साथ साथ रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आज बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर हजारों कार्यकर्ता तथा समर्थक पहुंचे हुए थे। श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी तथा नारी शक्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की उम्र की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष के दौरान 50,000 रूपये की राशि दी जाएगी। इस योजना का फायदा 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री गढ़कना में एक स्लम बस्ती में गए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20 लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस योजना के लिए बनाए गए आवासों की चाबी इन लाभार्थियों को सौंपी। श्री मोदी ने 2800 करोड़ रूपये की लागत की रेल परियोजनाओं और 1000 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी तथा लोकार्पण किया। उन्होंने 14 राज्यों के करीब 10 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3180 करोड़ रूपये की सहायता राशि की पहली किश्त भी जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त आवासों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 ऐप की भी शुरूआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के लिए संचालन दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की भागीदारी से तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए हैं और इस दौरान उनके परियोजनाओं तथा योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। श्री मोदी ने कहा है कि देश के लोगों को विकसित राष्ट्र की राह में बाधा पहुंचाने वाली तथा घृणा और हिंसा में विश्वास रखने वाली ताकतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। श्री शाह ने कहा है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि सरकार भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की सराहना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रूपये की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री पुरी ने कहा है कि 2014 के बाद से शहरी खर्च में 11 गुना वृद्धि देखी गई है और यह 1,57,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण, उन्नत प्रबंधन, विकास तथा वितरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आज 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और निरंतरता के मुद्दे पर निपटने के लिए एकजुट प्रयासों के महत्व का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले जल संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा की है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आज नई दिल्ली में पार्टी के विधायकों की बैठक के दौरान उन्हें आप विधायक पार्टी की नेता चुना गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक एकमत से निर्णय लिया गया है कि आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी। मीडिया से बातचीत में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी प्रमुख का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वे कड़ी मेहनत जारी रखेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए पहले से चल रही योजनाएं भी जारी रहेंगी। दो दिन पहले जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। श्री केजरीवाल आज शाम अपना इस्तीफा सौंपने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में प्रसार भारती सचिवालय में हिंदी दिवस के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सहगल ने कहा है कि हिंदी बोलने से सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा होती है, जो सबको समझ में भी आ जाती है। उन्होंने कहा है कि सभी वर्ग के साथ हिंदी बोलनी चाहिए। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कार्यकाल पुनः सुने प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी का इस्तेमाल करें। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौर, दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज सेवा पखवाड़ा के दौरान रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 16 निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर संभाग और 8 जम्मू संभाग में हैं। पहले चरण में 5,66,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदान 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया है कि कल नामांकन वापसी के अंतिम दिन 190 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों का उद्घाटन किया। इनका संचालन रेडक्रॉस के जरिए किया गया है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा 51,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घोषणा की कि कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर सफाई मित्रों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पेरू में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगलों में लगी आग के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 3,000 हेक्टेयर से अधिक फसल बर्बाद हो गए हैं। पेरू के प्रधानमंत्री गुस्तावो एंड्रियांजेन ने इंडिया और अमेजोन से लगते क्षेत्रों में घास के मैदानों में आग लगाने को मना किया है, क्योंकि ये आग जंगलों में फैलती जा रही है। और भारत और चीन के बीच एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला चीन के उलुनबियोर में आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।